रसिकगण भक्ति का फल ही नाम संकीर्तन, कारण नाम संकीर्तन ही यथार्थ रूप में अव्यर्थ भगवत प्रेम संपत्ति उत्पादक होता है। अव्यर्थ फल, अव्यर्थ मैंने क्या, ये अव्यर्थ
निशान से चुकेगा नहीं, निशान
राम बाण है। राम बाण जैसे अव्यर्थ होता है, राम बाण छोड़ देंगे अव्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। जैसे ब्रह्मास्त्र बल्कि चूक जाएगा, ये नहीं चूक जाएगा,
नारायण अस्त्र नहीं चूक जाएगा।
इसलिए कहते हैं कि भक्ति रसिक वैष्णव ने नाम संकीर्तन को भक्ति का फल, कैसे दो चार उदाहरणों से समझ लो। कल शायद बतलाया था व्यास जी ने भक्ति की समाधि में, भक्ति के द्वारा चित्त को समाधिस्थ कर लेने के बाद में जो कुछ उपलब्ध किया वो कीर्तन के माध्यम से जगत में प्रकाश किया, यही भागवत है। वाल्मीकि जी ने बहुत दिनों तक नारद की कृपा से समाधि में रामचरित्र का दर्शन किया, तत्व का दर्शन किया, और वही लौकुश के द्वारा कीर्तन करा करके जगत में पवित्र कर दिया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी भावाविष्ट होने पर हृदय में जो कुछ अनुभव करते हैं रक्षित भक्तों के सहित उसी का बाह्य और अर्धबाह्य में उसी का वर्णन करते हैं। पोस्ट अस्पंदन मात्र कीर्तन अनुभव, इसलिए जैसा हम लोग कर रहे हैं ये हमारा भी कीर्तन है, आप लोगों का भी स्वयं, आप लोग कहेंगे तो आपका भी कीर्तन है। भगवान का नाम रूप कथा गुणगान इत्यादि सभी कीर्तन के अंतर्गत में आ गए। इसलिए बतलाया जाए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज हुए श्रवण से, और सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव स्वामी ने कौन सा कीर्तन किया था, कोई गान उन किया था, ये सब यही कीर्तन है। चैतन्य चैतन्यमृत वो भी समाधि भाषा है, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कीर्तन करके जगत को पवित्र कर दिया, इसलिए समाधि भाषा का फल ही ये कीर्तन है, इस रूप में समझ। और कीर्तन न हो तो समाधि भी नहीं होगी, नाम के द्वारा ये समाधि भी शुद्ध होती है, चित्त हृदय निर्मल हो जाए। नाम संकीर्तन अव्यर्थ भगवत प्रेम संपत्ति उत्पादन का ये कारण है, इसका कभी भी व्यभिचार नहीं है। यदि अनर्थ युक्त व्यक्ति है तो उसका अनर्थ को दूर करेगा, और जिसका अनर्थ इत्यादि दूर हो गया, थोड़ी सी श्रद्धा होगी ये नाम कीर्तन बढ़ाकर प्रेम करते, साधुओं के संग में भी नाम कैसे सुंदर रूप में अनर्थ रूप में हो इसी का उपदेश, इसी का नाम संग, विशेष करके कलयुग के लिए संग मिलना बड़ा भारी कठिन है। जब संग नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, जैसा जानते हैं वैसे उसी रूप में हम कीर्तन करेंगे, और यदि संग मिलेगा तो उनके अनुगत्य में हम कीर्तन करेंगे। इसका व्यभिचार नहीं होता, जरूर इसका फल होगा ही। तो कल हम वर्णन कर गए थे नाम संकीर्तन को प्रेम का स्वरूप समझना चाहिए। संलक्षण प्रेम हरस्य कृष्णे कश्चित रसज्ञ उत्कथते तत् प्रेमनो हरेण एव निज इष्ट नाम संकीर्तनम ही स्फुरति फुटा। रसज्ञगण नाम कीर्तन को प्रेम का स्वरूप कहते हैं, इसीलिए कल हमने या परसों उसका उदाहरण दिया था, हे दैत हे देव हे दैत, अथवा हा रमन हा पृष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुज, उनकी गाथा को उसमें लेते हुए नमोनंत लीलाय, वो क्या है ये भी ऐसा ही हे दानवर इत्यादि नाम का आरती के स्वर से ये कीर्तन कर ऐसे सब नाम। तो लोगों का कहना है प्रेम रसिकों का नाम संकीर्तन ही प्रेम का उत्कृष्ट लक्षण, किसी को प्रेम हुआ कि नहीं हुआ वो किस तरह से नाम उच्चारण और किस तरह से वो कर रहा है कीर्तन उसके द्वारा समझ। यदि किसी का नाम करते समय चित्त द्रवित हो रहा है, विगलित हो रहा है, आंखों से आंसुओं की धारा विगलित हो रही है, हृदय में कंप तुलक अश्रु इत्यादि हो रहे हैं, वो काशी में जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कहता हुआ एक आदमी लौटता हुआ जा रहा है, ऐसे यदि भाव से उसको करते हुए देखेंगे तो क्या समझेंगे, कौन समझेगा, जो अंततः प्रेम का लक्षण जानता है। चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथ जी के दर्शन से जो अष्टसात्विक भाव इत्यादि उत्पन्न हुए उसको देख करके किसने समझा, और कोई समझा नहीं। और तो लठिया लेकर के मारने के लिए दौड़ गए, पागल कहाँ से आ गए मारने के लिए दौड़, वो भी तो ठाकुर जी के घर में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वहाँ पर प्रवचन भी सुनते होंगे, और सभी लोग धार्मिक विचार के हैं, गीता भागवत रामायण सभी पढ़े हुए, तो वो लोग मारने के लिए कौन जाए, वो लोग भक्ति रामा सामित सिंधु उज्जवल मणि इत्यादि जो जो जिसमें परिभाषिक जो ग्रंथ हैं और लक्षणात्मक जो ग्रंथ हैं उसको कभी देखा सुना नहीं, इसलिए निर्णय नहीं कर सकते, किंतु हमारे ये ज्ञानी होते हुए भी भले ही उस्वान भक्त न हो किंतु उन ग्रंथों को देखा, भक्ति गोस्वामी सुंदर तो उस समय नहीं थी किंतु और भी तो भरत इत्यादि के नाटक
साहित्य
इत्यादि से बहुत से ग्रंथ तो उनको देखा और उसके द्वारा ये निर्णय किया जा रही, ये तो सचराचर ये देखने की वस्तु नहीं है, ये तो सब उद्दीप्त प्रेम के ये लक्षण है, ये तो साधारण आदमी बस उस पर श्रद्धा हो गई, भगवान के रूप में नहीं, ये जरूर भक्त और कोई समझ न सके, इसलिए साधारण भक्तों की भी क्रिया मुद्रा दिव्य ना बुझकर देख लोग साधारण आदमी नहीं समझ पाते, इसलिए कभी कभी वो लोग अपराध और अनर्थ कर बैठते हैं। चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का ये विचार नहीं था जो राधा कृष्ण का भजन करेगा वो सभी सहजिया हो जाएगा, ये विचार है जो राधा कृष्ण का नाम लिया वो सहजिया हो गया। आजकल कुछ ऐसी हवा चलती है, चल रही है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते, वो दूसरों को ही अपने समान समझते हैं। जे सभी सबने मैंने नाक कटा लिया तो सभी नाक कटा लिया, हमारा अधिकार उसमें नहीं है पढ़ने का, तो कोई अब जगत में अधिकारी ही नहीं है, ऐसा नहीं। नैतत समाचरेत जातु, ये इसलिए नहीं कहा गया कि कोई भी भागवत ग्रंथ पढ़े नहीं, विशेषकर आप पंचाध्यायी उसको बांध करके गोलोक वृंदावन में भेज दो, यहाँ इस पृथ्वी पर रहेगा नहीं तो सब सहजिया हो जाएंगे, इसलिए नहीं। जरूरत नहीं है कली काल, सब सहजिया हो जाएंगे इसलिए कहा। यदि ऐसी बात हो तो तब फिर पीड़ितम ब्रज
ये श्लोक नहीं आता है कि इस श्लोक के उदाहरण देते हुए सब लोग वही कहते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, परंतु इसमें तो कहीं ये श्रवण या कीर्तन के लिए तो मना नहीं।
हाँ, तो वही तो
केवल आचरण के लिए कहा गया।
तो ऐसा तुम लोग मत समझना, चाहे जगत सब एक तरफ हो जाए, तुम लोग जिसका अधिकार है वो जरूर अनुसरण करो, और उसको कोई मना करने से वो मान सकता है, किसी के कहने से भी, किसी के कहने से ही समुद्र अपनी लहरें बंद कर देगा, और किसी के कहने से भी किसी सरोवर में तरंगे उठने लग जाएंगी, जब तरंग उठाओ तो उठने लग जाएगी, ऐसा कभी संभव है। इसलिए जिसमें जो चीज है, जैसे कहते हैं यदि बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता तो साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि नाम और प्रेम में कोई अंतर मत है, इसलिए यदि वैसा भावपूर्वक यदि कोई कीर्तन कर रहा है, जैसा कि महाप्रभु कीर्तन करते हुए गए और महाप्रभु को जगन्नाथ जी को देखा, भाव में सुदीप्त भावों को दीप्त करने लगे, उस समय में केवल एक व्यक्ति वो भी हृदय से ठीक से नहीं समझा, कभी किसी को ऐसा देखा ही नहीं था, केवल शास्त्रों में देखा, आदमी ने प्रत्यक्ष देखा, इसलिए श्रद्धा हो गई, कंधे में उठा करके अपने घर ले गए, नहीं समझे। जब महाप्रभु जी ने उनको षड्भुज का दर्शन दिया और अपनी भक्ति का प्रवेश उनके अंदर में करा दिया, वाचिक रूप में, हाथ रूप में और साक्षात दर्शन तीनों के द्वारा, अरे ये तो बड़े अपराध किए, क्या अपराध किया, हमने राय रामानंद से बड़ा
मजाक किया,
उनको मैं पागल और साधारण कोटि का विषय भोगी समझता था, वैसा तो नहीं, ऐसा अपराधिक भाव का जगत में लोग दुर्लभ है, राय रामानंद ही राय रामानंद है, दूसरा कोई व्यक्ति राय रामानंद नहीं हो सकता। अब उस राय रामानंद को पहला व्यक्ति है ये सार्वभौमटे जो समझा, और कोई समझा था महाराज प्रताप रुद्र राजा के परिकरों में से किसी ने, कोई नहीं, इसलिए महाप्रभु जी को कहा जैसे आप जाइए तो जरूर, इसलिए उसको समझना भी बड़ा कठिन है, अंततः तो उसके निकट में कुछ परिभाषाएं तो जानने वाला व्यक्ति कुछ हो, समझने की कोई चेष्टा करने वाला व्यक्ति हो तो इन चीजों को समझे। साधु संघ नाम के भागवत संघ मथुराभास से मुक्ति सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्मा यही पात्र, हम लोग तो भागवत भी श्रवण कर रहे हैं, मथुरापुरी में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं, वृंदावन में भी जाकर के त्रिरात्रि छ रात्रि दस रात्रि रह जाते हैं, गोवर्धन राधा कुंड में भी चले गए और भागवत का श्रवण करते हैं, नाम संकीर्तन भी कूद करके कितना करते हैं, साधु संग कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होता। वहां पर श्रद्धा का तारतम्य है, ना कि और कोई कारण है। श्रद्धा में जरूर कुछ तारतम्य है, जो करते हैं उनकी श्रद्धा उत्तमा है, और जो अभी करते हुए भी उनको कुछ नहीं हो रहा था, इसका मतलब वो ठीक से नहीं कर रहे, उनकी श्रद्धा में कुछ। तब श्रद्धा, श्रद्धा अनुसारी
उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार,
श्रद्धा अनुसारी ये विचार। इसलिए जो उसमें ऐसे हैं उनको तो वो हो जाएगा, आज जो कनिष्ठ है वो क्रमश मध्यम हो, मध्यम से होने से फिर एक बार एक मैं समझ समझो जो होते हैं मन से पांचों में से कर लिया और हो गया, होगा जरूर, किंतु किसी में समय की अपेक्षा है और किसी में आशु। आशु किसके लिए कहा गया, जिसमें वैष्णव अपराध अनर्थ इत्यादि का अभाव है, हृदय निर्मल हो चुका है और पूर्व जन्म की वासना इस जन्म की वासना है, वो लोग करेंगे तो बस ड्राफ्ट जल्दी हो, क्यों वही नाम दे रस के रूप में छुपे पाए, ऐसा सुन। इसलिए निज अपने इष्ट देव का नाम प्राण की व्याकुलता के समान, जैसे कल बतलाया था कुरली और चक्रवाकी की भांति, यदि खोग हृदय से किसको आएगा, जिसको भगवान की भक्ति के लिए विरह होगा वो तो करेगा, जिसको कोई विरह ही नहीं है भगवान से, भगवान से प्राप्ति की अभिलाषा जो रुचि का लक्षण है, तो रुचि का लक्षण भी नहीं हुआ। रुचि का लक्षण बतलाया था उस दिन याद है, किसी वैष्णव की ये परिभाषा है, जैसे मुकुंद दास जी का अपनी टीका में वो बतलाते हैं, भगवान के नाम रूप गुण के आस्वादन का कुछ अब लोभ आ गया है, तो ये रुचि आस्वादन के लिए कुछ उत्कंठा हो रही है, कुछ कुछ आस्वादन भी हो रहा है, अब उसको छोड़ने की इच्छा नहीं, ये हुआ एक। और जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं भाई तीन चीज होनी चाहिए, क्या
दर्शन की उत्कंठा, अनुकूल और सौहार्द,
कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा,
तीव्र
अभिलाषा और अनुकूल अभिलाषा, जिससे ये उत्कंठा बढ़ेगी, अनुकूल विषयों में उसकी अब टेस्ट होने लग गया। और तीसरा
सौहार्द भाव,
कृष्ण में ममता, सौहार्द भाव माने ममता, ये तीन आ गया, वो तो कृष्ण के लिए रोएगा।
सौहार्द भाव कृष्ण में सौहार्द भाव या कृष्ण भक्त में सौहार्द भाव,
भक्ति भक्त भगवान तीन और भक्त भगवान के परिकर इत्यादि सब सबका इनके लिए जब हो, और इसके साथ में जुड़ जाए यदि, ये तो हुआ रुचि, और इसमें यदि प्लस कर दो जोड़ दो पूर्व वासना पूर्व जन्म की और आधुनिकी
संस्कार,
ये जोड़ दो और इसमें फिर जोड़ दो चेष्टा रूपा
भाव रूपा
और भाव रूपा, ये जोड़ दो, भाव रूपा मैंने अंकुर वाली, वो महाभाव वाली नहीं, और इसमें भी लगा लो भाव रूपा में अनर्थ राहित्य, अनर्थ के लिए चेष्टा नहीं होती, इसलिए इसको भी भाव में रख लिया,
चेष्टा में साधन,
साधन में भी रख लो जो इंद्रियों के द्वारा हो रही है, ये रागानुगा भक्ति का साधन और वैदिक, ये दोनों को रख लो, विशेष करके रागानुगाम के लिए ये विशेष जरूरी है, बद्धि में उतना नहीं, और उसके बाद में भक्त और भगवान की अहत की, तब वो आकर के उतरती है, इसलिए रुचि साधारण चीज नहीं है। रुचि पूर्वक जो नाम करेगा वो ऐसा रोते हुए भगवान की देगा। एक रोटी के लिए उनको जरूरत है, भिक्षा मांगने जाते हैं, रोटी के लिए दांत नहीं तोड़ कर हाथ जोड़ करके और आंखों में आंसू लेकर के कौन रोटी मांगेगा?
जिनको
जो भूखा है उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो आज जिसको मिल रहा है कुछ वो रोएगा थोड़े, नहीं मेरा चलो दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे चलो नहीं होगा, हमारे घर में है रोटी आटा रखा है बना दे, तो वो रोएगा, दांत नहीं तोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा। ऐसे ही जिसको यह अनुभूति है कृष्ण की विरह की भावना, तब तो वो रोएगा। तो ऐसा प्राण की व्याकुलता के सहित परिस्फुट रूप में, परिस्फुट माने क्या, उच्च स्तर से कीर्तन करने से वहां स्वयं प्रेम भरे स्फुट, तब स्वयं वो कृष्णा ने कृपा करके कीर्तन के रूप में यहां पर स्फूर्ति प्राप्त होगा। और ऐसा नाम ही प्रेम है, कहते संकीर्तन और प्रेम अनन्य सिद्ध है, बिना कीर्तन के प्रेम नहीं और बिना प्रेम के
कीर्तन नहीं,
तब दोनों का साधन अवस्था भी है। विचित्र लीला सागर शब्द, विचित्र लीला रस सागर से प्रभुर विचित्रा स्फुरिता प्रसादा, विचित्र संकीर्तन माधुरी सा न तो स्वयत्ना साधु सिद्धे। कई भगवान जो हैं, भगवान का लीला रस, भगवान लीला रस के सागर सदृश, लीला रस, लीला और रस दोनों के सागर सदृश। ऐसे प्रभु की कृपा से ही यह भक्ति स्फूर्ति होती है। अपने जत्न और चेष्टा से संकीर्तन माधुरी कदाचित सिद्ध नहीं होगा। कोई एक महिला है, देखने से उसके प्रति ममत्व आएगा, कोई किशोर लड़का है, कोई किशोर लड़की है, या कोई औरत है एक लड़का है, अपनी कोई विपत्ति में आने पर अपनी माँ को देख करके जैसा विरह से वो पुकारता है, दूसरी औरत को देख करके पुकारेगा या दूसरे के पिता को?
बिना
ममता के संबंध के वो नहीं होगा, और उसमें भी विरह होना चाहिए, तो इसकी तो अनुभूति होनी चाहिए, नहीं तो आएगा कहाँ। इसलिए भगवान के लिए नाम करते समय सभी नहीं रोएंगे, संभव पर नहीं है, जिनको ये चीजें हैं तो ये चीज आएगी कहां से, उसी के लिए कहते हैं विचित्र संकीर्तन माधुरी सा। वो जो विचित्र संकीर्तन माधुरी रस पूर्वक जो है, न तो स्वजत्नात इति साधु सिद्धि, अपने जत्न से सिद्ध नहीं होगा वो, यदि प्रभु यदि प्रकट हो जाएंगे, हृदय में आदिर्भूत हो गए, तब तो अपने आप मधुरमा की राशि बहन, और अन्यथा हम प्रयत्न से करें। एक भावाविष्ट होकर के आदमी कीर्तन नृत्य कर नृत्य करने लग गया और एक आदमी जानबूझ करके कीर्तन कर रहा है, दोनों अंतर नहीं होगा। हरिदास ठाकुर का नृत्य और डंक जिसको मारा वो ब्राह्मण, दोनों का एक नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को तब तक के लिए नित्य कीर्तन सब करना चाहिए, क्योंकि इसका अतिरिक्त और उपाय नहीं, किंतु माधुरी के लिए रसास्वादन के लिए प्रतीक्षा करने पड़ेगी। कब तक? जब तक वो आदिभूत स्वयं नहीं हो जाते, प्रयत्न से वो चीज नहीं आए। इसलिए प्रयत्न हम करेंगे, प्रयत्न क्या करेंगे, साधु गुरु वैष्णवों की सेवा करेंगे, नाम की सेवा करेंगे और जो साधन है करेंगे, किंतु माधुरी तभी आएगी जब तक कि वो हृदय में स्फूर्ति स्वयं प्राप्त करें। इसलिए उनके नाम में और हमारे नाम में बहुत अंतर है। यहां पर सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं श्लोक की टीका में, भाई जोर से कहने में तो लज्जाती है नाम, रास्ते पर चले जाएंगे या यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अपने अपने घर में भी हो तो कोई जोर से नाम कीर्तन करता है? यदि किसी ने कर दिया तो चारों तरफ से उसे लोग पकड़ लेते हैं, क्या खुला मचा रहा है, कर देते हैं, पागल बना देंगे। तो कहते हैं कि नाम संकीर्तन में, उच्च संकीर्तन में करने में लोक लज्जा, और यदि कोई करने लगा तो लोग पूजा देने लग जाएंगे, पूजा प्रतिष्ठा रुपया पैसा धन संपत्ति देने लगेंगे, और अधिक संकीर्तन करेगा तो सिर में दर्द हो जाएगा, और तरह तरह की बीमारी हो सकती है, गला बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं, खुद जोर से कीर्तन कर, दुर्बलता आ जाएगी, बहुत विघ्न होता है कुछ स्पर्श कीर्तन से, यह पूर्व पक्ष है, होता भी है, एक घंटा कीर्तन बहुत अधिक वक्त, गला बैठ जाएगा, शरीर क्लांत हो जाएगा और सब विघ्न हो जाएंगे। इसलिए दूसरों के अलक्षी, यहां पर दूसरा कोई ना, किसी को डिस्टर्बेंस न हो लेकिन बाधा न हो, अनायास मानस चिंतन से ही सिद्ध हो जाता है, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं, कोई समझता नहीं कोई कर रहा है कि आदमी है कि नहीं, ये मालूम ही नहीं हो, और कोई विघ्न की आशंका भी नहीं है, ऐसा मानस चिंतन क्यों नहीं किया जाए? इसलिए उच्च संकीर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, मन के द्वारा ही चिंतन करो और उसी के द्वारा सब हो जाए, भगवान का नाम रूप गुण लीला जीभ में भी हटाओ नहीं तो जीभ थक जाएगी, चुपचाप करो। उस पर ये कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, कहते हैं ओ ऐसा मत कहो, ऐसा कहना उचित नहीं, क्यों? विचित्र लीला रस के सागर स्वरूप, प्रभु की स्फूर्ति विचित्र प्रसाद से उत्कार की विचित्र संकीर्तन माधुरी स्फूर्ति होती है, वो जो लीला माधुरी का रस स्वादन और वैसा नित्य गीत करने लगता है, हा हा करने लगता, हा श्री जसोदा थाने प्रसिद्ध, वैसा भक्त जब करता है अनुराग से भर कर, तो वो होता है कैसे? भगवान का नाम स्वयं वहां पर स्फूर्ति प्राप्त होता है, इसलिए वहां पर ऐसा होता है, चेष्टा से नहीं हुआ, वो भगवान की कृपा से ही सिद्ध हुआ। इसलिए यदि प्रभु प्रसन्न है और उनकी कृपा से यदि हुआ और अपने पौरुष बल से वो माधुरी यदि नहीं सिद्ध हुई तो ये प्रभु की कृपा से हुआ, तो यदि हुआ तो उसमें कोई विघ्न नहीं, न गला बैठेगा, न बाहर के लोग कुछ ऐसा कर सकेंगे, और दूसरी बात यदि करेंगे भी तो कौ कुत्ते भूक रहे हैं हजार बाजार में, हाथी के लिए कुछ भी नहीं बनता, गला वो न तो उनकी अपेक्षा करेगा, वो भौंक रहे हैं तो भौंकते रहें, उनसे न तो उनका बिगड़ता है न, इसलिए कहते हैं कि प्रभु की जब कृपा ही हो गई तो मीरा भाई को उसके राज्य के सब लोग, माता पिता ससुर सास और पति कुछ कर सके, प्रहलाद महाराज जी का कोई कुछ बिगाड़ सका? कोई नहीं कुछ बिगाड़ सका। हरिदास ठाकुर का कोई बिगाड़ सका? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसलिए कहते हैं कि पौरुष बले माधुरी कदाचित सिद्ध है ना, अपने पुरुषार्थ के बल से चेष्टा के बल से ये चीज नहीं आती है, वो तो भगवत कृपा से उसके हृदय में स्फूर्ति होती है। तब नाम संकीर्तन में संबंध में वो जो विघ्न बाधाएं दूसरे लोगों की कहने की बातें और ये सब था, वो सब दूर हो जाएगा। यही बात नौधा भक्ति के सबके संबंध में समझो, यदि अनुराग से भर करके कोई भी इसमें श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन करेंगे हो जाएगा, किंतु नाम संकीर्तन में जैसे प्रेम जल्दी जल्दी से हो जाता है उसमें कुछ विलंब लग सकता है, और उसमें नाम संकीर्तन का सहज भी लग सकता है, इसलिए श्रेष्ठ, इसलिए प्रभु की यदि कृपा होगी तो नाम संकीर्तन माधुरी लाभ यदि किया जाए तो कुशाग्र विघन भी नहीं होता। कुशाग्र मैंने कुश के अग्रभाग जैसा छोटा तुच्छ होता है, इतना भी विघ्न नहीं आएगा। अब विघ्न कुछ आएगा कोई परवाह नहीं, यही विघ्न का आना और विघ्न का मालूम नहीं होना, विघ्न नहीं होना, यही साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का अंतर उद्दीपक। माने क्या?
साधन भक्ति,
साधक भक्तों को सब समय विघ्न आएगा, भाव भक्तों में विघ्न आने पर भी
कुछ नहीं होगा,
विघ्न आए तो वो कुछ समझेगा नहीं जब विघ्न कब आया क्या हुआ। अभिज्ञात अखिलात क्लेशा, अखिल क्लेश आएंगे किंतु अभिज्ञात है, और प्रेमा भक्ति में
आएगा ही नहीं,
आएगा ही नहीं। जब भगवान की कृपा से माधुरी यहाँ पर आ गई अब विघ्न कोई उत्पन्न नहीं करेगा, किंतु साधन अवस्था में बहुत विघ्न है। इच्छा वशात पापम उपासकानां क्षीयते भोगान मुख अभिजुष्मत प्रारब्ध मात्र भवति भौतिक एषा कर्म आवश्यकम यद अवश्य भोग्यम। ये विचारणीय है, नहीं तो इसमें हम लोग अपराध कर बैठते। कभी कभी जो भक्ति कुछ भी नहीं करते वो बड़े सुख से जीते हैं, उनको कोई पाप का फल भोगना ये सब देखा नहीं जाता, बड़े आराम ऐश बैश ठाट से वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। दूसरे पक्ष में जो भगवान का भजन करते हैं उनको पद पद में कुछ कुछ विघ्न देखा जाता है, और उनको दुख भी भोगते हुए देखा जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए बहुत से लोग नास्तिक हो पड़ते हैं, और यहाँ आकर के भी भजन में साधु संग करते हुए भी साधु संग को छोड़ करके चले जाते और फिर संसार रूपी नरक में डूब जाते हैं। कहते हैं कि वही अच्छा है, इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं। कोई कोई कहते हैं यदि कहो ऐसा महाप्रभाव संपन्न हरिनाम संकीर्तन करने पर भी या भक्ति करने पर भी, विशेष करके नाम संकीर्तन करने पर भी, श्रीवास को खाने के लिए क्यों नहीं जुटता था? महाप्रभु जी को तीन बार ताली क्यों बजानी पड़ी? बजाए ना तीन बार, जानती है ताली बजाए हर चीज से शिवास पंडित है तो बस कोई समझ नहीं सका। शिवा शिवा जी ने बजाया था, वहां पर क्या बात श्रीवास एक दो तीन। फिर उन्होंने पूछा जरा स्पष्ट करके बतलाओ प्रभु, एक रात उपवास, दूसरा रात उपवास और तीसरा रात नहीं तो गंगा जी है कुछ जाए। तो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, स्वयं लक्ष्मी जी भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा भले ही कर ले किंतु तुमको ये दारिद्र का दुख तुमको भोगना नहीं पड़ेगा। भले ही लक्ष्मी जी भिक्षा मांगने लगे किंतु तुमको उपवास करना पड़ेगा, ऐसा कदापि कभी हो नहीं सकता है। भक्तों में ऐसी ही बात होती है। तो ये भक्तों में ये श्रीवास में दारिद्र क्यों आया? तीन भाई दिन रात करताल बजाते रहते,
चार भाई,
चार भाई खाने के लिए कोई उद्यमी नहीं है। श्रीधर को देखा जाता है थोड़ा मोछ मोचा इत्यादि साग सब्जी लौकी बेच करके किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करते। महाप्रभु का अधिकांश भक्त भगवान का भजन करने वाले पांडवों पर प्रारंभ जन्म से लेकर के अंत तक विपत्ति ही विपत्ति, सीता जी पर कितनी विपत्ति, प्रहलाद महाराज पर विपत्ति का कोई था नहीं, ये ऐसा क्यों देखा जाता है? हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में चमड़े उधेड़ कर मांस सब हटा करके और मारा गया, ये सब तो देखा जाता है। शरीर उनके कांप जाते हैं भाई, भक्ति की जरूरत नहीं। उसके लिए कहते हैं कि भक्तों का जो दुख देखा जाता है, आप तो नाम संकीर्तन के लिए कहा और विघ्न भी कुशाग्र भर उनका नहीं रहता, यहाँ पर तो देख रहे हैं हम साक्षात रूप से। हम लोगों जैसे अस्थिर चित्त वालों के लिए, जो भी भक्ति में अभी प्रवेश नहीं किए हैं अब प्रवेश करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा गया। कहते हैं सर्वदा भगवान नाम सेवा परायण, उपासकों के जो भोगोन्मुख प्रारब्ध भोग जो है पाप सफल, दुख के आकार में देखे जाने पर भी वो इच्छा के अनुसार ही उसको भोगते हैं या नहीं भोगते हैं? कौन?
भक्त लोग।
भक्त लोग इच्छा बसात पापम उपासकानां खियेत, पाप क्षय हो जाते हैं अथवा भोगोन्मुख भोग भी करता है। कहेगा जी हम भाई भोग कर लेंगे, भोग कर लें, और चाहेंगे जो नहीं हमारे पाप सब दूर हो गए, पाप दूर हो जाएंगे, वो इतना सामर्थ्य रखते हैं। तो ये ऐसा कोई भोगते हैं और कोई नहीं भोगते हैं, इसलिए अनुभव सिद्ध बातों को सनातन गोस्वामी जी हम लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं कि वैष्णव लोग जब इच्छा करें तो उनके पाप सब समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और शुभ फलजनक पुण्य ही अवशिष्ट रहता है, किसी किसी का कोई भी विघ्न नहीं आता। हमारे रूप गोस्वामी जी नंदगांव में कदम्ब टेर के यहाँ भजन करते थे नयन, और उस समय जंगल था और सांपों का अड्डा, जहाँ थोड़ी सी ऊंची भूमि रहेगी और बाकी बरसात में सब डूब जाए तो समझे जी वहां पर क्या होगा,
सांप रहेगा ही,
सब समय सांप वहीं पर रहेगा, साधारण सांप नहीं, उधर में बड़े बड़े सांप थे। मोर कहाँ रहते हैं?
जहाँ सांप
रहता है वहां पर, उस सब जगहों में मोर सब अभी थी। तो वहां पर रूप गोस्वामी जी जबकि एकदम घोर जंगल था उस समय रहते, आज कल कोई नहीं रहता। एक छोटा सा बाबा जी भी था, वो रहता था तो उसको मारपीट करके भगा दिया, और गांव में आता है जाकर के वो देख सुन लेता है, बस रात में नहीं रहता। डकैत लोग आते हैं और वहीं पर रात में डेरा जमाते हैं, सदर के तुम यहाँ पर आना मत, आज छोड़ देने तो कल तुम्हारा गला काट लेंगे। वहीं पर आकर के बांटते चोटते ये सब करते हैं, रुपये पैसे सांप भी हैं और सब बातें हैं। रात की रात में कुछ हो जाए तो कोई सहायता करेगा? रूप गोस्वामी जी वहां पर भजन करते हैं, उनको कोई क्लेश हुआ कोई क्लेश हुआ, एक एक पेड़ के नीचे सोते थे, उनको कोई क्लेश सांप इत्यादि सब आया, मलेरिया मच्छर काटा, मलेरिया हुआ, हम लोग तो यहाँ पर मच्छर मच्छरदानी एक दिन न लगाए तो बस हो जाए, तो उनको विघ्न नहीं आता। तो इसके लिए कहते हैं कि वो प्रभु की कृपाई आ गई तो वो फिर क्या उनको कि ये सब आएगा। अच्छा, ये सनातन गोस्वामी कहते क्यों नहीं होता, क्यों कि यदि प्रारब्ध नाश हो जाएगा तो शरीर तभी गिर जाएगा। ये शरीर किस लिए बना है?
प्रारब्ध की वजह से।
और भी अवशिष्ट लाखों कर्म है जो अप्रारब्ध के रूप में है, अविद्या के रूप में है, उनको अभी छुआ नहीं गया। कौन सा आम हम खाएंगे? एक साथ एक पेड़ से हमने 1000 आम तोड़ करके रख दिया, एक दिन पक जाएंगे, पकते जाएंगे, खाते जाएंगे। तो जो पके नहीं हैं अधिक रूप में वो अप्रारब्ध कर, आज जो पक गए हैं जिनका भोग हम करने के लायक हो गए हैं उन्हीं को लेकर के बना करके ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार में ये शरीर बना है। तो वो उन कर्मों का फल जब तक जीवन रहेगा अंत तक मरने तक भोगना पड़ेगा, और यदि प्रारब्ध कर्म यदि दूर हो जाएगा पाप पुण्य तो शरीर छूट जाएगा। यदि भक्त लोगों का एक हरि नाम करने से कीर्तन करने से प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया पाप पुण्य दोनों, तो शरीर नहीं रहेगा, तो भजन कैसे करेंगे आगे वाला? अभी भजन की तुष्टि नहीं, इसलिए जानबूझ करके कुछ प्रारब्ध कर्मों में से रख लेते हैं। उसका आकार रहता है विष रहित सर्प की भांति, उसमें विष नहीं होता किंतु आकार ऐसा कर कुछ करके खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही पापों का आकार उसके अंदर में दिख पड़ेगा किंतु उसमें पाप नहीं रहता, वो प्रारब्ध कर्मत्व जो है वो केवल इसलिए रखा है कि भगवान का भजन जो अभी हमारा बाकी रह गया है सिद्धि का, वो सिद्धि नहीं होगा इसलिए। समझ में आया? इसलिए प्रारब्ध कर्मनाश और तहार अवस्थिति नाम संकीर्तन इच्छा भी, इसलिए वैष्णव लोग इच्छा करते हैं भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक, इसलिए तुम भोग भी करते। दूसरी बात, हरि भक्ति सुधोदय में ऐसा कहा गया है, हरि भक्ति
सुधोदय
एक ग्रंथ है भक्ति का, हमारे गोस्वामी ने इसको ग्रहण किया है प्रमाण रूप में। हरि भक्ति सुधोदय सुधा उदय कर्म चक्रंतु जब प्रोक्तम अभिलंघ्य सुरासुर, सुर और असुर के लिए कर्म जो चक्र है प्रोक्तम ये जरूर भोगना, वो टाल नहीं सकते सुर और असुर दोनों। मद भक्ति प्रबलय मतो विद्धि लंघतम एव तत्, किंतु यदि हरि भक्ति का प्रबल उदय हो गया तो ये सब कर्म चक्र कहाँ उठ जाएगा, किंतु जब तक भक्ति उस रूप में उदित नहीं हुई है तब तक नहीं होगा, तब तक तो भोगना पड़ेगा। किंतु इतर इतर माने जो ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात उपासक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति कदाच, उपासकों अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अज्ञापतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम, ऐसे करने वाले अभी उत्तमा भक्ति तो नहीं हुई है किंतु निष्कपट रूप में उसका आचरण साधन कर रहे हैं और अंततः कुछ साधन में बढ़ गए हैं, ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी दूसरे व्यक्ति ज्ञानी कर्मी योगी तपस्वी यदि नाम संकीर्तन करते हैं तो करने से उनकी अवश्य वो प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट कर रहता है, वो तो उनको जरूर भोगना पड़ेगा। और जो साधक वाले हैं उसमें भी यहाँ पर बतलाएंगे उनका दूर नहीं होता, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। ज्ञानी लोग अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाएंगे कभी भोगना पड़ेगा जब तक कि मुक्त नहीं हो जाए, योगी तपस्वी सभी लोगों और भक्त लोग इच्छा करेंगे तो करेंगे और नहीं तो नहीं भोग करेंगे। किंतु अप्रारब्ध कुटकर्मार्थी उनके नाम संकीर्तन के आभास से अप्रारब्ध कर्मनाश हो जाएगा किंतु प्रारब्ध नहीं होगा, किंतु हमारे रूप गोस्वामी ने बतलाया है
जग ब्रह्म साक्षात निष्ठयाति
निष्ठयाति बिना सम आयात बिना अनुभवई
अपैतु नाम
अपैतु नाम स्फुरणेन तत्ते, नाम की स्फूर्ति होनी चाहिए भाई, जब तक नाम की स्फूर्ति नहीं है तब तक भोग करना पड़ेगा। और नाम जहां स्फूर्ति हो गई
प्रारब्ध कर्म विरोध वेद
एक कृष्ण नाम से सब पाप का, किंतु नाम की स्फूर्ति होने दीजिए, ये नाम की स्फूर्ति साजी भाई सबके लिए संभव पर नहीं। कुटस्थ और ये सब कर्म नष्ट हो जाएंगे किंतु प्रारब्ध कर्म भोग करना पड़ेगा क्योंकि उनके संबंध में कर्म सकल भोग कर द्वारा ही खड़े होते हैं। फिर बतला रहे हैं पाप और पुण्य के व्यतिरिक्त शरीर नहीं रहता, कुछ न कुछ पाप रहेगा कुछ पुण्य रहेगा, इसलिए प्रारब्ध अर्थात भक्त लोग प्रारब्ध कर्मों को इच्छा अनुरूप भगवान से प्रार्थना करके उसको रखने देते हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं रहेगा और शरीर नहीं रहने से भजन नहीं होगा। दूसरी बात, भक्ति दैन्य मूला है, कुछ दुख रहेगा तो दैन्य होगा। यहाँ पर हम लोग खाते पीते आराम से हैं, सोने के लिए गलीचे मिल जाते हैं और बिना पैसे का पंखे की हवा मिल जाती है आराम के साथ में, मच्छरदानी लगाने का कष्ट भी नहीं करना पड़ता है, एकदम आकर यहाँ छोड़ छोड़ और पंखा खोल दो आराम के साथ। यदि सिर और पैर में दो जगह हवा ठीक से नहीं लगती है तो दोनों का तरफ का पंखा खोल या चार तरफ खोल करके बीच में सो जाए, ऐसे आराम पूर्वक। और घरों से मालपुआ मिल जाए और रोज रोज पुजारी जी मालपुआ भोग दें, और ऐसे भक्त लोग भक्ताइन भी मिल जाए, दिन रात चलता रहे आराम के साथ में, हा आएगा हृदय में। इसलिए कहते हैं दैन्य मूला भक्ति के लिए, आस्वादन के लिए, जैसे कुंती पर इतना दुख नहीं आता, देवी पर इतना दुख नहीं आता, ये तो सिद्ध भक्त हैं। सिद्ध भक्त लोग किस लिए इन चीजों को ग्रहण करते हैं? दूसरों के उपदेश के लिए। ये आएगा, ये भी चीज बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए